ओम ओम
आदिगुरु भगवान शंकराचार्य विरचित वेदांत डिंडिमा इस विषय पर वेदांत विचार चल रहा है। अभ्यास के लिए 35वां श्लोक। सत्ता स्फुरण सौख्यानी वासन्ते सर्ववस्तुषु तस्मात् ब्रह्ममयं सर्वम् इति वेदांत डिंडिमः। अवस्थात्रितयं यस्य क्रीडा भूमितया स्थितम् तदेव ब्रह्म जानीयात् इति वेदांत डिंडिमः। यन्नादो यच्च नास्त्यन्ते तन्मध्ये भातमप्यसत् अतो मिथ्या जगत सर्वम् इति वेदांत डिंडिमः। यदस्त्यादो यदस्त्यन्ते यन्मध्ये भाति तत्स्वयम् ब्रह्मैवेकमिदं सत्यम् इति वेदांत डिंडिमः। पुरुषार्थतया विष्टः पुरुषापशवो ध्रुवम् मोक्ष्यार्थी पुरुषश्रेष्ठः इति वेदांत डिंडिमः। घटकुट्यादिकं सर्वं मृत्तिका मात्रमेव च तथा ब्रह्म जगत सर्वं इति वेदांत डिंडिमः। जब वेदांत की बात सुनते हैं और ये सुनते हैं कि ये सारा जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, समग्र संसार प्रपंच का कारण ब्रह्म है, तब कुछ व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठता है, ये प्रश्न खड़ा होता है सामान्य नियम के अनुसार कारण के गुण कार्य में स्वतः आ जाते हैं, कारण का धर्म कार्य में स्वतः आ जाते हैं, जैसे कि पंचदशी स्वाध्याय में आप लोगों ने सुना आकाश में एक गुण है, वायु में दो गुण हैं, अ अपने कारण आकाश का शब्द गुण भी वायु में आ जाता है। इसके चलते वायु में दो गुण हो गए, स्पर्श अपना गुण है, अपने कारण आकाश का गुण उस स्पर्श के साथ साथ वायु में भी सीति शब्दनम। आकाश का गुण शब्द, वायु जब चलता है तो आवाज आती है, तो आवाज ये आकाश का गुण है। इसी तरह विद्यारण्य मुनि जी ने बता दिया, तेज में तीन गुण हैं, अग्नि में तीन गुण हैं, उसमें स्पर्श अग्नि का अपना गुण है, नहीं वायु से आया है, रूप अग्नि का अपना गुण है, उसमें स्पर्श वायु से आया। बन्नौ भुगु भुगु ध्वनि ये आकाश से आया, तो अग्नि में तीन गुण हैं। इसी प्रकार से जल में चार गुण हैं। अपना गुण तो है ही है जल का, मधुरम गुणम, जल का अपना गुण है मधुर। तेज का गुण है रक्त पीत हरित नील या अवास्वर शुक्ल रूप। जल में अवास्वर शुक्ल रूपता जो है वह तेज से आया, शीत स्पर्श वो वायु से आया। इसी प्रकार से जल में बुलबुल ध्वनि, जल जब भी कहीं बकता है चलता है तो कलकल आवाज, तो जल में जो कलकल आवाज आई है वो आकाश से आया। इसी प्रकार से बताया पृथ्वी में पांच गुण हैं, अपना निजी गुण है गंध, सुरभि इतर गंधौ दो, सुगंध और दुर्गंध पृथ्वी का अपना गुण है। तिक्त कटु लवण कषाय ये जल का गुण आ गया पृथ्वी में। इसी तरह शुक्ल पीत आदि रूप ये तेज का गुण आ गया, काठिन्यम स्पर्श ये वायु का गुण आ गया, और कड़क कड़ा शब्द ये आकाश का गुण आ गया। पंचदशी की इस प्रक्रिया के अनुसार क्या सिद्ध हुआ कि कारण का गुण स्वतः कार्य में आ जाते हैं और दिखता भी है, अनुभव में भी आता है। सारा विश्व ब्रह्मांड का कारण यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म का गुण, ब्रह्म का धर्म, ब्रह्म का स्वभाव सारे विश्व ब्रह्मांड में दिखना चाहिए, तो फिर जगत मिथ्या कैसे कह दिया महाराज? तो वही बता रहे हैं कि दिखता है ब्रह्म का धर्म, ब्रह्म का स्वभाव, ब्रह्म का गुण, नाम जो कुछ भी दे दो, वह उसके अपने कार्यों में स्पष्ट बोध होता है। किस रूप में बोध होता है महाराज? तो ये श्लोक के द्वारा वो बात शंकराचार्य जी समझा रहे हैं। सत्ता स्फुरण सौख्यानी भासन्ते सर्ववस्तुषु तस्मात् ब्रह्ममयं सर्वम् इति वेदान्तदिण्डिमः। कारण रूप जो ब्रह्म है उसमें ये तीन चीज स्वरूप से है। सत होनापना अस्तित्व जिसको वेदांत सत कहता है, सत ये ब्रह्म का, सत ब्रह्म में स्वरूप से है, ये ब्रह्म का स्वरूप है सत। इसी प्रकार से चित, चित माने चेतना, चित माने ज्ञान। ये चित शब्द ज्ञान का पर्यायवाची है। चित शब्द चेतना का पर्यायवाची है। तुम चित कहो, चेतना कहो, या ज्ञान कहो, या फिर प्रकाश कहो, ये पर्यायवाची शब्द है। तो ये चित अर्थात चेतना, प्रकाश, ज्ञान ब्रह्म में स्वाभाविक रूप में है, क्योंकि स्वरूपतः है। जो वस्तु जिसमें स्वरूप से रहता है वहां कोई संबंध नहीं होता, न संयोग संबंध, न समवाय संबंध। इसी तरह सौख्यानी, सौख्य सुख, सौख्य माने सुख, सुखता, सुखपना, ये आनंद का पर्यायवाची है। सुख क्या है? आनंद का पर्यायवाची है। सुख कहो, प्रिय कहो, आनंद कहो, वेदांत में ये शब्द पर्यायवाची है। ये जो तीन चीज है, सत, चित और आनंद, ये तीन चीज ब्रह्म में स्वरूप से है। और वही ब्रह्म सारे जगत का कारण है, तो अपने कार्य में ये तीन चीज स्वतः दिखना चाहिए, चाहिए कि नहीं बोलो? डॉक्टर ने कहा तुम्हें शुगर, मधुमेह, शर्करा रोग लग गया है, मधुमेह है, शुगर है, डायबिटीज है, आलू मत खाओ। सबसे पहले निषिद्ध भोजन में आलू शब्द का ही प्रयोग करते हो, आलू मत खाओ। डॉक्टर ने आलू खाने के लिए मना कर दिया। घर में आकर उसने पत्नी से कहा कि तू टिक्की बना ले आलू की। क्यों? शुगर हो गया है इसलिए आलू की, आलू तो नहीं खाएंगे, टिक्की खा लेंगे। अब क्या टिक्की बनाकर, वेफर बनाकर, समोसे बनाकर, भंडा बनाकर, बड़ा बनाकर खाने से आलू में जो गुण है वह टिक्की में आएगा कि नहीं? कारण खाने के लिए निषेध किया है, कार्य को खाने के लिए तो निषेध नहीं किया है ना। अभिप्राय क्या है? आलू में जो तत्व है वह आलू के तमाम कार्य में तो स्वाभाविक रूप से स्वतः चला जाता है। डॉक्टर का अभिप्राय यह है कि नहीं, बोलो हा? लेकिन रोगी मैं जैसा था, आलू में है वो, टिक्की में थोड़ी है। कारण में हो सकता है, कार्य में थोड़ी आएगा। कार्य बना लो, कार्य में कोई हर्जा नहीं है। तो कोई रोगी यदि यह समझता हो तो उसका यह समझना गलत है। जैसा उदाहरण, इसी तरह ये सारे जगत का कारण ब्रह्म है और ब्रह्मणे ब्रह्म में ये तीन चीज स्वाभाविक रूप में है, तो ब्रह्म का जो कार्य रूप जगत ब्रह्मांड विश्व प्रपंच, उसमें ये तीन चीज स्वाभाविक रूप से आनी चाहिए कि नहीं? हाँ, शंकराचार्य कहते हैं आता ही है, आता ही है। ठीक कह रहे हो, आने ही चाहिए। हाँ, किस रूप में आ रहा है? पदार्थों में, ब्रह्म पदार्थों में किस रूप में है? सत्ता के रूप में है। ब्रह्म पदार्थ में किस रूप से है? चित्त के रूप में है, यानी ज्ञान के रूप में है। ब्रह्म पदार्थ में किस रूप में है? तो प्रिय के रूप में है। ये तीनों चीज हर कार्य में स्वतः आता ही है। और इस बात को विचार करके हर पदार्थ में ब्रह्मानुभूति करने का अभ्यास ही ब्रह्माभ्यास है, और ब्रह्मानुभूति करना ही ब्रह्म ज्ञान है। इसके अलावा ब्रह्म, ये तीन के अलावा ब्रह्म चौथा किसी भी रूप में तुम्हारे अनुभव में नहीं आ सकता। ये तीन के अलावा ब्रह्म परमात्मा आत्मा अन्य किसी भी रूप में तुम्हारे अनुभव में नहीं आ सकता है। तस्मात ये तो यही है, तस्मात इसी कारण से ये कहा जाता है ब्रह्ममयम सर्वम। सारा जगत परमात्मा मय है, ब्रह्ममय है। बस मय शब्द मयट, ये ब्रह्म के विकार अर्थ में ब्रह्ममय है जगत, ऐसा नहीं। ब्रह्म प्राचुर्य अर्थ में जगत ब्रह्ममय है, घट किमय मृन्मय। घट कैसा है? मिट्टीमय है। घट मिट्टीमय कैसे महाराज? क्योंकि उसका कारण मिट्टी है। घट का कारण क्या है? मिट्टी है। तो मिट्टी का गुणधर्म सब घट में आएंगे, इसीलिए घट मृन्मय है। कारण का धर्म कार्य में स्वतः आता है। सारे जगत का कारण ब्रह्म है, तो सारा जगत किमय है? ब्रह्ममय, क्योंकि कारण का धर्म कार्य में आता है। ब्रह्म में क्या धर्म है? सत, चित और आनंद। सत का अर्थ अस्तित्व, ब्रह्म का जो अस्तित्व है वो पदार्थ में अस्तित्व के रूप में अनुभव में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। इसके अलावा हम ब्रह्म को और किस रूप में देखना चाहते हैं? बड़ी मुश्किल है भैया। जो रूप में दिखाई पड़ सकता है, यानी जो रूप को हम देख सकते हैं, उस रूप में ब्रह्म होने पर भी हम ब्रह्म को नहीं देख रहे हैं। हम फूल को देख सकते हैं, है कि नहीं बोलो? हम किसको देख सकते हैं? फूल को देख सकते हैं। ब्रह्म फूल के रूप में परिणत होकर हमारे सामने आ गया तो हम क्या कह देते हैं? फूल है। क्योंकि फूल दिखाई पड़ता है, ब्रह्म दिखाई पड़े इसलिए फूल बनकर आ रहा है। अब हम कह देते हैं कि ये ब्रह्म है, तो बोले ये भी कई ब्रह्म होता है, ये तो फूल है। हमको विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है ये ब्रह्म हो सकता है। हम उसको तिरस्कार कर देते हैं। फिर ब्रह्म किस रूप में है? तो बोले ब्रह्म तो सच्चिद आनंद रूप में है, और सच्चिद आनंद रूप में तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा नहीं। और सच्चिद आनंद के रूप में दिखाई पड़ रहा है उसको मानते नहीं हो? और सच्चिद आनंद नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं जगत में, पदार्थ तो नहीं है ना? बोलो, सत नाम का लंबा पदार्थ है कि छोटा पदार्थ है कि गोल पदार्थ है कि मोटा पदार्थ है कि सत नाम का पदार्थ कैसा है? हाय, लंबा जिसको कह रहे हो उसमें भी सत है, छोटा जिसको कह रहे हो उसमें भी सत है, मोटा जिसको कह रहे हो उसमें भी सत है, क्योंकि हाय शब्द प्रयोग किया कि सत की उपस्थिति हो गई कि नहीं, बोलो? है शब्द प्रयोग किया कि सत की उपस्थिति हुई, और यदि सत की उपस्थिति न होती तो पदार्थ को तुम है शब्द से प्रयोग ही नहीं कर सकते। बंद्या के पुत्र में सत की उपस्थिति है कि नहीं है? तो फिर क्या बंद्या के पुत्र की अस्तित्व, तो बंद्या के पुत्र में ब्रह्म नहीं है? तो बंद्या के पुत्र में सत माने नहीं है, इसका मतलब बंद्या के पुत्र में ब्रह्म नहीं है, पदार्थ ही नहीं है। पहले पदार्थ होना चाहिए, और पदार्थ होने के लिए ब्रह्म की सत्ता चाहिए, ब्रह्म की सत्ता के बिना पदार्थ होगा नहीं। ये अनावश्यक परिकल्पना क्यों करते हो? जो भी पदार्थ है उसमें सत है, क्योंकि कार्य, बंद्या का पुत्र कार्य नहीं है। पहले तुम बंद्या के पुत्र में कार्यता सिद्ध करो, तब फिर ब्रह्म है कि नहीं ये प्रश्न आएगा। बंद्या का पुत्र किसका कार्य है? बंद्या का, शब्द से तो यही लगता है कि बंद्या का कार्य है। बंद्या जन्य है, बंद्या का पुत्र शब्दों से क्या लग रहा है? बंद्याजन्य है। जगत किम रूप है? ब्रह्मजन्य है। जगत का जनक ब्रह्म, बंद्या पुत्र का जननी बंद्या है? तो इसीलिए तो ब्रह्म नहीं है वहां, पदार्थ ही नहीं है तो ब्रह्म कहां से होगा? सत्ता स्फुरण दिखता है बंद्या का पुत्र। संसार में जो भी पदार्थ दिखता है वो दिखने में हेतु क्या है? तो ब्रह्म की उपस्थिति है।
तुम्हें यह दिख रहा है कि नहीं, माला है, इसका मतलब ब्रह्म की उपस्थिति है। कारण धर्म कार्य में आ गया, ब्रह्म कारण है, कारण का धर्म दिखनापना वो इस पुष्प में आया है और दिख रहा है। स्फुरण और सौख्यानी, ब्रह्म में सुखता है, आनंदता है, जगत ब्रह्म का कार्य है, कारण का धर्म कार्य में स्वतः आता है, इसीलिए तुमको ये पुष्पमाला प्रिय है कि नहीं, पसंद है कि नहीं। ये पसंदपना प्रियपना आया कहां से, पुष्प में प्रियपना आया कहां से, यही तो प्रियता, यही तो आनंद था। हाँ, ये सारे पदार्थ में ब्रह्म इन्हीं तीन रूप से अनुभव में आ रहा है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, हमें भरोसा नहीं है। ब्रह्म दर्शन हो रहा है, यह हमें भरोसा नहीं हो रहा है। पता नहीं हम ब्रह्म को किस रूप में देखना चाहते हैं, भगवान ही जाने। परमात्मा को पुत्र के रूप में देखना चाहते थे वसुदेव देवकी, है, और कृष्ण परमात्मा पुत्र के रूप में आए तो भूल गए, भूल गए। उन्होंने अपना रूप दिखाया भी, लेकिन उसके बाद गायब, वो रूप हटा दिया। फिर पुत्र के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में रोने लगे, चिल्लाने लगे, कराने लगे। तब उनको भरोसा ही नहीं हुआ कि ब्रह्म रोता है, है? देवकी को भरोसा हुआ ब्रह्म रोता है, ऐसा तो कहीं सुना नहीं था, और उनका पुत्र रोने लग गया तो कैसे मानेंगे ब्रह्म है? है? ब्रह्म खाता है, ऐसा तो कहीं सुना नहीं था, अब उनका पुत्र दूध चूसने लग गया तो कैसे भरोसा होगा कि उनका पुत्र ब्रह्म है? भरोसा होगा? आप लोगों को हुआ है? आप लोगों को हुआ है मेरा पुत्र ब्रह्म है? हैं? जब आप लोगों को, उसको भी नहीं हुआ। थोड़ी देर में कृष्ण ने पेशाब कर दी तो कहीं सुना था ब्रह्म पेशाब करता है? तो फिर उनको भरोसा ही नहीं हुआ कि मेरा बेटा ब्रह्म है, परमात्मा है। थोड़ी देर में वह उनका बेटा चलने लगा, पेड़ से घिसरते हुए, खिसकते हुए उरगा बन गया। ब्रह्म चलता है ऐसा कहीं सुना ही नहीं था, वो चलने लग गया पेड़ से, तो कैसे विश्वास होगा कि मेरा बेटा ब्रह्म है? जबकि ब्रह्म उनका बेटा होकर आया है, विश्वास ही नहीं है तो अब करोगे क्या? सत्ता स्फुरण सौख्यानी, ये दृष्टि, ये चिंतन इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि पदार्थ न दिखे, ये तीन वस्तु दिखे, पदार्थ नाम रूप न दिखे। और हम राम नाम रूप को ही देखते हैं, और ये नाम रूप में जो चीज है वो नहीं देखते। इसलिए ब्रह्म का अपना नाम रूप न होने के कारण माया के नाम रूप का आश्रय लेकर सबके सामने आता है तो हमें भरोसा नहीं होता, और माया के नाम रूप का आश्रय लिए बिना वो हमारे सामने आ नहीं सकता है, बड़ी विडंबना है, इसलिए हमें भरोसा नहीं होता है। सायंकाल वाक्य वृत्ति में यही तो प्रसंग चल रहा है। शंकराचार्य जी वाक्य वृत्ति के माध्यम से यही तो प्रसंग को स्पष्ट कर रहे हैं। महाराज आपने कहा जीव और परमात्मा की एकता ही संसार बंधन से छूटने का सरल उपाय है, लेकिन जीव क्या है यही मैं नहीं जानता हूं। जीव क्या है मैं इसी को ही नहीं जान रहा हूं। जीव क्या है, कहां है जीव, कौन है जीव, कैसा है जीव, तो शंकराचार्य जी ने कहा कि तू ही है। और यदि तू पूछता है कि मैं कौन हूं, शंकराचार्य जी कहते तू ब्रह्म है। यदि तू पूछता है कि ब्रह्म क्या है, शंकराचार्य जी कहते हैं कि तू है ब्रह्म। भरोसा ही नहीं हो तो अब करें क्या, बोलो। तू ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही तू हुआ है। इसके अलावा और क्या कह सकते भैया। तस्मात् ब्रह्ममयम् सर्वम् इति वेदांत डिंडिमः। वेदांत का ये डिंडिम घोष है कि जगत में ब्रह्म के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, ब्रह्म के अलावा और किसी चीज का अनुभव होता ही नहीं। और यही तो बड़ी विचित्र बात है। अजमेर में एक संत रहते थे, स्वामी मनोहर दास जी, बड़े अच्छे संत थे और बड़े कट्टर वेदांती, सिंधी थे, सिंध से आए हुए मनोहर दास, बड़े सुंदर ढंग से देखा वेदांत प्रवचन करते थे। वो पूछते थे कपड़ा दिखा करे, क्या देख रहे हो, तो बोले कपड़ा देख रहा हूं, और क्या देखते हो, लाल देख रहा हूं, और क्या दिखाई पड़ रहा है, पूछे जाए भक्त उनको जो अनुभव आ रहा है उसको बताते जाते थे, और वो पूछे जाए और क्या देख रहे हो, और क्या देख रहे हो, और क्या देख रहे हो, अंत में वो कहते थे अरे भाई जो सबसे पहले दिखा है वो तो तुम नाम ही नहीं लेते हो। सबसे पहले क्या दिखा, क्या दिखा ये, सबसे पहले देखा उसका तो नाम ही नहीं लेते हो। अरे सबसे पहले रोशनी दिखी क्या दिखा बोलो, इस नोट के ऊपर पड़ा हुआ रोशनी पहले दिखी कि नहीं आपको, रोशनी दिखे बिना नोट दिखेगा बोलो, इसके ऊपर नो लेबल क्या आवरण है कि नहीं, लेमिनेशन, और रोशनी दिखा कोई बोलता ही नहीं, और रोशनी से ही सब दिख रहा है, और रोशनी दिखा कोई बोलता नहीं, है ना विडंबना। जैसे साधारण दृष्टांत में पहले रोशनी दिखाई पड़ती है, आंख का विषय रोशनी है ना, रोशनी दिखाई पड़ता है, तो उसके बाद नोट दिखे पड़े, उसके बाद लाल दिखे, उसके बाद पीला दिखे, लाल पीला रोशनी नहीं है, शुक्ल रूप रोशनी का है, पहले रोशनी उसमें है और उसके बाद वस्तु दिखता है, इसलिए तो भार रूपम। और रोशनी दिखे, दिख रहा है यानी ब्रह्म दिख रहा है, भार रूपम भाति, रोशनी दिखा कोई कहता ही नहीं, कहता है, उसी बात को स्पष्ट करते हैं। पहले अस्थि दिखता है, भांति दिखता है, प्रिय दिखता है, तब जाकर नाम और रूप तो चौथे और पांचवें नंबर में पड़ता है भैया।
अवस्थात्रितयम् यस्य क्रीडा भूमितया स्थितम् तदेव ब्रह्म जानीयात् इति वेदांत डिंडिमः।
तीन अवस्था जिसके खेल के मैदान है। ब्रह्म जागृत में आकर खेलता है विश्व बनकर, ब्रह्म स्वप्न के भूमि में जाकर स्टेडियम में जाकर खेलता है तेजस बनकर, ब्रह्म सुसुप्ति अवस्था में उस भूमि में जाकर खेलता है प्राज्ञ बनकर। अवस्था त्रितयम्, ये जो तीन अवस्था है वो क्रम से ब्रह्म के क्रीड़ा करने के लिए क्रीड़ा स्थल है। वो इन्हीं तीन प्लेटफॉर्म में आकर खेल रहा है, तीन मैदान में आकर खेल रहा है। हाँ, क्रीड़ा भूमि, क्रीड़ा की भूमिका है ये। जागृत एक भूमिका है, विश्व बनकर खेल रहा है। स्वप्न दूसरी भूमिका है, तेजस बनकर खेल रहा है। इसीलिए जागृत सत स्पष्ट अनुभव होने वाली भूमिका, तेजस चित माने भाति, चित भाति स्पष्ट अनुभव होने की भूमिका, प्राज्ञ प्रिय स्पष्ट होने की भूमिका। जागृत में ब्रह्म की प्रियता इतना स्पष्ट प्रगाढ़ नहीं जितनी ब्रह्म की प्रियता सुसुप्ति में प्रगाढ़ होती है। इसलिए बिना साधन के, बिना वस्तु के, बिना नाम रूप के भी ब्रह्म सुसुप्ति में प्रिय की स्पष्ट या गाढ़ अभिव्यक्ति होने के चलते तुम्हें वहां ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। समझे कि नहीं? सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म की प्रियता का, आनंद का गाढ़ अभिव्यक्ति है। हाँ, और स्वप्न में ब्रह्म के चित्त की, चेतना के, ज्ञान के गाढ़ अभिव्यक्ति है, और जागृत में ब्रह्म के सत की ज्यादा अभिव्यक्ति है, स्पष्ट अभिव्यक्ति है। सुसुप्त में सत की इतनी अभिव्यक्ति नहीं है, इसलिए जागृत होते ही सुसुप्ति पदार्थ के स्पष्ट असत्ता सिद्ध हो जाता है। जागृत के पदार्थों में ज्यादा सत की अभिव्यक्ति होने के कारण ये कई दिनों तक इसकी अभिव्यक्ति बनी रहती है। स्वप्न के पदार्थों में सत की स्पष्ट अभिव्यक्ति तो नहीं है, इसलिए जागते ही खत्म। लेकिन चित्त की अभिव्यक्ति यह है कि तुम जागने के बाद भी स्मरण यानी उसका याददाश्त, तुम उस पदार्थों का ज्ञान, पदार्थ तो खत्म हो गए क्योंकि सत की ज्यादा अभिव्यक्ति नहीं थी, इसलिए तुरंत इमीडिएटली तुम जाग गए कि वो नष्ट हो गए। लेकिन ज्ञान की अभिव्यक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि पदार्थ नष्ट होने पर भी जागृत में भी उसका अनुभव ज्ञान तुम्हारे साथ रहता है। और सुसुप्ति अवस्था में आनंद की इतनी अभिव्यक्ति होती है कि वह जागृत में भी उसका तुम अनुभव करते रहते हो। केवल वहीं इतने करते हो, इतना नहीं, जागृत में भी उसका याद करते रहते हो, फ्रेश होते रहते हो, अनुभव करते रहते हो। इसलिए क्रीड़ा भूमि है ये तीन अवस्था, ब्रह्म के खेलने की क्रीड़ा भूमि है। अवस्था त्रितयम् यस्य क्रीड़ा भूमिस्तया स्थितम् तदेव, ये तीन अवस्था में जो खेलने वाला है विचरण करने वाला है, कभी जागृत में, कभी स्वप्न में, कभी सुसुप्ति में, कभी सुसुप्ति में, कभी स्वप्न में, कभी जागृत में, खेलता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, उसी का नाम ब्रह्म है। और इसके अलावा ब्रह्म और कहां खोजने जाओगे, किस रूप में खोजना चाहते हो, हमें कोई आकार तो बताओ, कोई तुम्हारा सूत्र तो बताओ, इसके अलावा किसी अन्य रूप में ब्रह्म को जानना चाहते हो तो किस रूप में जानना चाहते हो। जागृत में सच्चिदानंद के रूप में अनुभव में आ रहा है, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था में वह खेल रहा है, क्रीड़ा करता हुआ अनुभव में आ रहा है, इसके अलावा फिर ब्रह्म को और कौन रूप में जानना चाहते हो। इति वेदांत डिंडिमा। अब यदि तुम कहते हो कि नहीं महाराज, जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में तो मैं घूमता हूं, ब्रह्म घूमता हुआ तो अनुभव नहीं आता है, आप इतना तो कह सकते हो ना गुरु को, जागृत में भी मैं ही घूमता हुआ, मैं ही खेलता हुआ अनुभव हो रहा है, ब्रह्म खेलता हुआ अनुभव नहीं हो रहा है, स्वप्न में भी मैं ही खेलता हुआ अनुभव हो रहा है, ब्रह्म खेलता हुआ दिखता नहीं, सुषुप्ति में भी मेरा ही विचरण दिखता है, अनुभव में आ रहा है, ब्रह्म खेल रहा है, ऐसा मुझे अनुभव नहीं होता है महाराज। बोले तत्त्वमसि, और क्या है, त्वम तत्त्वमसि, तुम कह रहे हो ना कि मैं खेल रहा हूं, तो मेरे खेलने का तो अनुभव मुझे हो रहा है, ब्रह्म खेलने का मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, तो कहते हो तो तू ही ब्रह्म है, काम खत्म, खेल खत्म हो गया कि नहीं, तो ही ब्रह्म है। अब वो अपने को विश्वास ही नहीं करता कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं, अब क्या कहें उसको, है? मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं कहता है वो, अब निश्चय ही नहीं कर पा रहा है वो, मैं हूं ये सत्ता तुम अपनी सत्ता को मानते हो कि नहीं, इसीलिए तुम ब्रह्म हो, मैं हूं ये तुम अपने को जानते, अपनी सत्ता को जानते हो कि नहीं, इसीलिए तुम ब्रह्म हो, मेरे होने का मुझे दुख है कि सुख है, प्रिय है, इष्ट है, इष्ट है मेरे होने का, मेरे अस्तित्व का मुझे इष्ट है, अच्छा लग रहा है, इसलिए तुम ब्रह्म हो। अब कैसे समझाएं इसके अलावा, भाई वही बात यहां समझा रहे हैं, यन्नादो यच्च नास्त्यन्ते तन्मध्ये भातम अप्यसत् अतो मिथ्या जगत सर्वम। बड़ा विचित्र बात है वेदांत में, कभी तो कह देते हैं कि ये जो कुछ भी जगत दिख रहा है ये सब ब्रह्म है, अब फिर ये कह देते हैं ये जो जगत तुमको दिख रहा है वो मिथ्या है, का अभिप्राय क्या है, सारा जगत ब्रह्म है अस्थि भाति प्रिय के रूप में, सारा जगत मिथ्या है नाम और रूप के रूप में, ये दिमाग में ये दो पक्ष को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक वेदांत की ये भाषा समझना हमको कठिन लगेगा। क्या एक तरफ ये कहते हैं कि सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सारा जगत ब्रह्ममय है, सारा जगत ब्रह्ममय है तो ब्रह्म सत है, चित है, आनंद है, तो सारा जगत सच्चिदानंद रूप है। दूसरी बात, जगत मिथ्या है, लो जी अब जगत मिथ्या है, निश्चय करें कि जगत ब्रह्म रूप है, यह निश्चय करें। वेदांत का यह कहना है दो में से किसी एक का निश्चय करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जगत मिथ्या है यह निश्चय करोगे तो क्या होगा, ब्रह्म सत्य सिद्ध हो जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो गया, सारा जगत ब्रह्ममय है यह निश्चय करोगे तो जगत वैसे ही मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। सारा जगत ब्रह्ममय है ये निश्चय होते ही जगत जगत के रूप में ही नहीं दिखेगा ना, ब्रह्म के रूप में दिखेगा। तो जगत जगत के रूप में नहीं दिखेगा तो ऐसे भी बाधित हो गया जगत। दोनों पक्ष से जगत को ही बाध होना पड़ेगा। जगत को बाध होने का मतलब केवल नाम रूप का बाध होना है, अस्तिवाति प्रिय का बाध नहीं होना है। यन्नादो यच्चनास्त्यन्ते, आदो जो आदि माने पहले नहीं था और बाद में, अंते माने बाद में नहीं रहता, वो पदार्थ यदि बीच में प्रतीत होता है तो भी वह नहीं के सरा ही प्रतीत हो रहा है, ये नहीं ही है बस। जिसमें पहले सत्ता नहीं है बाद में सत्ता नहीं है, बीच में यदि कहीं सत जैसा दिखता है तो वो सत है ही नहीं। आदो अंते चे नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, उसी का ही अनुवाद कर रहे हैं शंकराचार्य। यह नादो जो पहले नहीं था, यच्च नास्ति अंते बाद में जो नहीं रहता है, तत् मध्य बीच में, भातम अपि दिखाई पड़ने पर अनुभव में आने पर भी असत, असत्वेन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सत्ता ही नहीं, पहले भी सत्ता नहीं है बाद में भी सत्ता नहीं है, तो बीच में सत्ता होने की तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अतो मिथ्या जगत सर्वम इति वेदांत डिंडिम, उसी को फिर और को दूसरा जो है ये अन्वय के रूप में 37वां श्लोक व्यतिरेक के रूप में निषेध कर दिया और 38वां श्लोक अन्वय के रूप में, यदास्त्यादो यदस्ति अन्ते तन्मध्ये भाति तत् स्वयं, जो पहले था है, जो बाद में भी रहता है और बीच में यदि दिखता है तो वो वस्तु स्वयं ही सद्रूप है। पहले भी सत था बाद में भी सत अस्तित्व रहेगा, तो बीच का अस्तित्व भी वो सत ही है, असत हो ही नहीं सकता है। पहले असत था बाद में असत होगा, बीच में दिखता है तो वो भी असत है। पहले सत था बाद में सत रहेगा, तो बीच में जो दिखता है वो सत ही है, सत ही दिख रहा है। ब्रह्मैवैकमिदं सत्यम् इति वेदांत डिंडिमः, और आगे क्या कहेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।